भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हिंदी में लीलामृता नहीं है, हिंदी में हो विल रीड फॉर मी। ओम ज्ञातिमिरंदस्य ज्ञानंजनाशलाक्या चक्षुरन्मिलितानि येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदामयं ददाति सु वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्राजतं सहगणा रघुनाथन्वितं तं सजीवं सद्वैतं श्रीराधा कृष्णापदां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगद्पते गोपेशा गोपिका राधा कंत नौ तप्ता कंचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानु सूति देवी प्रणमामि। वंचा कल्पा तरव्यस्य कृपा सिंधु भयेव च पतितानां पवनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री हरे। हरे कृष्ण। तो जैसे मैंने कहा था, एकादशी के दिन हम लोग लीलामृता से पढ़ते हैं, तो थोड़े समय के लिए लीलामृता पढ़ेंगे और फिर भागवतम के श्लोक पर उपदेश देंगे। तो इस समय आप लीलामृता में पढ़ रहे हो स्टे हाई फॉर एवर, हमेशा ऊंचा रहो। क्या है अनुवाद?
अंतकाल तक उच्च पदस्थ बने रहो।
आप कहोगे ये कैसे संभव है? एक समय प्रभुपाद जी अपने भक्तों के साथ चर्चा कर रहे थे कृष्ण भक्ति को कैसे फैलाया जाए, क्योंकि प्रभुपाद जी के गुरु महाराज ने आदेश दिया था ले जाओ चैतन्य महाप्रभु जी के संदेश को पश्चिम देश में। तो प्रभुपाद जी जैसे आप जानते हो उन्हें बड़ा संघर्ष करना पड़ा पहले हिंदुस्तान में, और आप भक्तों का सौभाग्य है खास करके जो भक्त हरे कृष्ण धाम में सेवा कर रहे हैं, क्योंकि प्रभुपाद इस स्थान के आगे से गुजरते थे श्रीमती महाराज जी के घर जाने के लिए। श्रीमती महाराज जी जिन्होंने प्रभुपाद जी को जहाज की टिकट दी थी अमेरिका जाने के लिए, उनका घर बिल्कुल निकट ही था और उन्होंने प्रभुपाद जी को निमंत्रण दिया था बॉम्बे आने के लिए, और प्रभुपाद जी बॉम्बे आकर उन्हें रोज भागवत का उपदेश दे रहे थे। उस समय ये हरे कृष्ण लैंड एक बहुत बड़ा जंगल था आगे और पीछे मकान थे, और इस स्थान में 500 साल पूर्व एक बड़ा प्रसिद्ध मंदिर होता था। तो प्रभुपाद जी ने इस स्थान का अनेक समय दर्शन दिया और प्रभुपाद जी ने भावना प्रकट की थी भगवान को, अगर भगवान भविष्य में कभी स्थान उन्हें देंगे तो इस स्थान में वो एक खूबसूरत मंदिर बनाएंगे। उस समय प्रभुपाद जी के पास मुश्किल से 200 रुपये थे, यहाँ से अंधेरी वो पैदल जाते थे पैसा बचाने के लिए। और उनके मन में क्या भाव था कि अगर ये स्थान मिलेगा तो खूबसूरत मंदिर बनाएंगे. तो यह है शुद्ध भक्ति की इच्छा और भगवान कैसे पूरा करते हैं. तो श्रीमती मणाथ जी ने उन्हें सुविधा दी थी अमेरिका जाने के लिए कानपुर क्षेत्र में. उस पहले तो उन्होंने कहा, स्वामी जी अब विदेश आके क्या करोगे, ये बुरी उम्र में विदेश थोड़ी जाना चाहिए, आप मुझे भागवत सिखाओ. प्रभुपाद जी ने कहा कि मैंने गुरु के आदेश का पालन करना है. तो प्रभुपाद जी अमेरिका गए और जैसे आप जानते हो टॉमकिंस स्क्वायर पार्क में उन्होंने अपना प्रचार का आंदोलन आरंभ किया और इसका उनका पहला केंद्र खोला था न्यूयॉर्क में. उस समय एक बड़ा प्रसिद्ध अमेरिकन कवि था जिसका नाम था एलन गिन्सबर्ग. तो एलन गिन्सबर्ग बड़ा प्रसिद्ध कवि था और उस समय का अमेरिका और आज के अमेरिका में बहुत अंतर है. उस समय रिवाज था हिप्पियों का, हमेशा नाम सुना गया हिप्पी. प्रॉपर ने कहा वी आर कन्वर्टिंग हिप्पीज इनटू हैप्पीज. हिप्पी उसे कहते थे तो लंबे बाल रखते थे, तो समाज के हर कार्य का विरोध करते थे और साथ में भंग भी लेते थे. और ये हिप्पियों का भी एक गुरु था. हर क्षेत्र में गुरु होता है, आध्यात्मिक क्षेत्र में जो माफिया है उनका भी गुरु होता है. हमने इटालियन माफिया का नाम सुना है, तो ये इटालियन माफिया में भी परंपरा है. उनकी भी परंपरा चलती है. तो एलन गिन्सबर्ग अमेरिका के उस वक्त हिप्पीज की का गुरु था और बड़ा प्रसिद्ध था. एक दफा वो कुछ कहता था तो सब उसके शिष्य मानते थे. तो एलन गिन्सबर्ग प्रभुपाद जी को मिलने आए थे और बड़े प्रभावित हुए थे. उन्होंने भी हरे कृष्ण चैंटिंग शुरू कर दिया था. हालांकि एलन गिन्सबर्ग की कई बड़ी बुरी आदतें थी जिनका हम चर्चा नहीं कर सकते, पर एक अच्छा कार्य उसने किया. उसने हरे कृष्ण मंत्र को बड़ा सहयोग दिया. उसने कहा हाँ ये चैंट है मेडिटेशन के लिए, शांति के लिए. तो प्रभुपाद जी बैठे थे एक दिन उमापति और हरि युवा के साथ. हरि युवा प्रभु का देहांत हो गया और वो उस समय इंग्लिश के प्रोफेसर थे ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी में. और प्रभुपाद जी की जो शुरू की किताबें थी उन किताबों को उन्होंने एडिट किया था. और साथ में थे उमापति. उमापति प्रभु इस समय चाइना में प्रचार करते हैं. तो उमापति और हरिगीवा प्रभुपाद जी के साथ बैठ रहे थे और वो लोग एक डिजाइन कर रहे थे एक टेम्पलेट जो सबको बांटने वाले थे न्यूयॉर्क के लोअर ईस्ट साइड में. लोअर ईस्ट साइड वो स्थान था जहाँ की अक्सर अमेरिकन हिप्पी लोग बैठते थे. तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा पैम्पलेट बनाया और एक प्रसिद्ध अमेरिकन मिलने आया था. उसने कहा प्रभुपाद कृष्ण भक्ति इतनी सुंदर है. और उमापति प्रभु खड़े हो गए और कहने लगे इतना अच्छा है कृष्ण भक्ति, इतनी अच्छा है कि आप हमेशा ऊपर ही जाते रहते हो. उन दिनों में लोग ड्रग्स लेते थे एक ऊपर जाने का अनुभव करने के लिए. वो एक दूसरी दुनिया में जाते थे ड्रग्स लेकर. इंग्लिश में कहते हैं स्टे हाई फॉर एवर. तो उमापति ने कहा कृष्ण भक्ति इतनी सुंदर है कि कृष्ण भक्ति जो भी स्वीकार करे वो हमेशा आनंद 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 उसका केवल बढ़ते जाएगा. तो प्रभुपाद कहा यस दैट्स राइट, ये सच है कि जो कृष्ण भक्ति अनुभव करेगा वो केवल आनंद ही आनंद अनुभव करेगा. और उमापति प्रभु ने फिर कहा एंड नो मोर कमिंग डाउन. इसका अनुवाद करना मुश्किल है. नो मोर कमिंग डाउन मतलब कि कृष्ण भक्ति अगर आप अनुभव करोगे तो आनंद ही आनंद बढ़ते जाएगा और किसी हालत में आप नीचे नहीं आओगे, मतलब कि आनंद ही आनंद में रहोगे। और फिर उमाप्रिय हरिदेव ने मिलकर एक पैम्पलेट बनाया जो इस प्रकार से था, स्टे हाई फॉर एवर, हमेशा आनंद में रहो या ऊंचा रहो, नो मोर कमिंग डाउन, अब नीचे आने की संभावना नहीं, क्योंकि हाशीश या ड्रग्स वगैरह में आप लोग थोड़े ही समय के लिए और समाज को भूल जाते हो, फिर वापस नीचे आना पड़ता है। ये थोड़ी की शराब लो या कुछ, उसका नशा हमेशा रहेगा, थोड़ी देर लग जाता है फिर वापस खत्म हो जाता है, वापस लौटना पड़ता है संघर्षों के सामने। थोड़े समय के लिए आप अपने संघर्ष को भूलते हो फिर वापस उनका सामना करना पड़ता है। हम सिनेमा जाते हैं, इंद्रिय तृप्ति में जुड़ते हैं, सोचते हैं कि इन कार्यों के द्वारा सारी समस्याएं हल हो जाएंगी, पर हल नहीं होती, वापस अनुभव करना पड़ता है। तो प्रभुपाद ने उन्होंने लिखा, प्रैक्टिस कृष्ण कॉन्शियसनेस, एक्सपेंड योर कॉन्शियसनेस बाय प्रैक्टिसिंग द ट्रांसेंडेंटल साउंड वाइब्रेशन, एंड व्हाट इज दैट, हरे कृष्ण हरे तो भक्तों ने ये पैम्पलेट बांटा हर जगह, जैसे आप लोग रथ यात्रा हो या कोई उत्सव हो तो पैम्पलेट बांटते हो, तो उन दिनों में भी प्रभुपाद जी अलग अलग स्थानों में प्रोग्राम कर रहे थे, और उन दिनों में कृष्ण भक्ति का इतना ज्यादा परिचय नहीं था, तो भक्त पैम्पलेट बांट के अलग अलग स्थानों में जाते थे। तो इस समय आप उस स्थान को, उस अध्याय को पढ़ रहे हो जहाँ की लिखा बताया जा रहा है किस प्रकार प्रभुपाद जी ने कृष्ण भक्ति की स्थापना की, कहाँ, अमेरिका में। इसका उनका पहला केंद्र की स्थापना हुई थी न्यूयॉर्क में, दूसरे की सैन फ्रांसिस्को में, और तीसरे की हुई थी मॉन्ट्रियल में। तो थोड़ा सा पढ़ेंगे, रिपोर्टर फ्रॉम द न्यूयॉर्क टाइम्स, अच्छा आप पढ़ो।
न्यूयॉर्क टाइम्स का एक संवाददाता वहां आदम का, और उसने एलन से भेंट वार्ता के लिए अनुरोध किया, किंतु एलन ने अस्वीकार कर दिया। जब कोई पूजा कर रहा हो तो उसमें विघ्न नहीं डालना चाहिए, टाइम्स को प्रतीक्षा करनी होगी। एलन, उन दिनों
न्यूयॉर्क टाइम्स विश्व का सबसे प्रसिद्ध अखबार है, और जब प्रभुपाद जी गए थे और जब प्रभुपाद जी ने अपनी संस्था की स्थापना की तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने कई लेख लिखे थे प्रभुपाद जी के ऊपर। यहां भी आप पढ़ रहे हो कि न्यूयॉर्क टाइम्स का जर्नलिस्ट एलन गिन्सबर्ग को इंटरव्यू करने आया, क्योंकि एलन गिन्सबर्ग, जैसे मैंने कहा, अमेरिका का बड़ा प्रसिद्ध कवि था, और उसमें थोड़ी कमजोरियां भी थी, और गुरु जो हाशीश लेते थे उन सबका गुरु था, वो खुला कहता था लोगों को, आज टेक ड्रग्स एंड फील हाई, पर अब उसने ये कहना शुरू कर दिया, चैन हरे कृष्ण एंड फील हाई, पहले कहता था टेक ड्रग्स एंड फील हाई, इसका बड़ा अच्छा प्रभाव था। तो एक रिपोर्टर उसे मिलने आया था इंटरव्यू करने, एलन गिन्सबर्ग ने कहा, अभी मैं समाधि में हूं, वेट कर रहा
हूं। एलन, उन दिनों टॉमकिन स्क्वायर पार्क आध्यात्मिक संघर्षों का अड्डा बन गया था, इसलिए वॉशिंगटन स्क्वायर पार्क का यह दृश्य सचमुच महान था। तमाम तरह की बातों, मादक द्रव्यों और सिद्धांतों के मध्य अकस्मात ऐसा अवसर प्रकट हुआ था कि कुछ लोग अपने शरीर और संगीत के द्वारा बौद्धिक जड़ता को तोड़कर पूर्ण भक्ति व्यक्त कर सकते थे। यह सचमुच आश्चर्यजनक था। काले लोग और पोर्टो रिको निवासी भी अपने ढोलों के साथ वहां पहुंच गए थे और कोंगा नृत्य कर रहे थे, किंतु यहां एक भिन्न ही प्रकार का जनसमूह था, जिसमें कुछ के सिर घुटे हुए थे, जो बड़ा ही मनोरंजक था। यहां का कीर्तन आवृत्तिमय था, लेकिन वह महान था, उसमें सम्मिलित होना आसान भी था। यहां का दृश्य बिल्कुल उन्मुक्त था, कीर्तन में किसी के लिए अलग विशेष स्थान नहीं था, इसलिए केवल निरर्थक ढोल पीटने के स्थान पर यहां सामान्य रूप से मुस्कानों, अनुमोदन और प्रोत्साहन का वातावरण बन गया था, जिसे पार्क में एक प्रकार के वास्तविक सांप्रदायिक मिलन का आरंभ कहा जा सकता था, जो आपसी विचार विनिमय की दृढ़ आधारशिला बन सकता था। प्रभुपाद प्रभावोत्पाद लग रहे थे। उच्च स्वर से गाने के प्रयत्न में उनकी भौहों पर बल पड़ गया था और उनकी मुद्रा से शक्ति टपक रही थी। उनकी कनपट्टी की शिराएं उमड़ आई थी और सबों को हरे कृष्ण सुनाने हेतु गाते रहने से उनका जबड़ा आगे निकल रहा था। यद्यपि उनकी मुद्रा मनोहारी थी, किंतु उनका गायन बड़ा ही गंभीर और कभी कभी तेज लगता था और वह जैसे एकाग्रता में डूबे हों। यह किसी अन्य का योगाश्रम अथवा मौन शांति जागरण नहीं था, वरन यह प्रभुपाद की अपनी कृति विशुद्ध कीर्तन की तन्मयता थी। यह नई लहर थी, एक ऐसी वस्तु जिसमें हर कोई सम्मिलित हो सकता था। समाज इसे स्वीकार करता प्रतीत होता था। यह इतना लोकप्रिय हो गया कि आइसक्रीम बेचने वाला वहां अपनी बिक्री के लिए पहुंच गया। प्रभुपाद के अतिरिक्त सुनहरे बालों वाले 5-6 वर्ष के बच्चों का एक समूह उनके निकट बैठा था। एक तरुण पोलैंड वासी बालक खड़ा घूर रहा था। किसी ने अपनी धातु की धूपदानी में दहकते कोयले पर धूप बत्ती जलाना आरंभ कर दिया और उसकी मधुर सुगंध का धुआं वंशी वादकों ढोलकियों तथा कीर्तनियों के बीच लहराने लगा।
तो आपने सुना कि किस प्रकार प्रभुपाद जी ने भक्तों के साथ कीर्तन आरंभ किया, किस प्रकार इतनी भीड़ हो गई थी कि दूरी पर जो व्यक्ति आइसक्रीम भेज रहा था, जो आइसक्रीम बेचते हैं वो तो पहुंच जाते हैं जहां भी पब गिरात में, वो वहां छोड़कर पहुंच गए वहां आइसक्रीम बेचने के लिए। और एक छोटा पोलिश लड़का भी 5 साल का नाचने लगा। तो प्रभुपाद जी ने असली चमत्कार किया। जब प्रभुपाद जी पहले बॉस्टन में पहुंचे थे तो उन्होंने अमेरिका की स्थिति देखी और उन्होंने कहा, कौन सुनेगा चैतन्य महाप्रभु जी के संदेश को। प्रभुपाद जी का एक और नाम था कवि, क्योंकि प्रभुपाद जी शुरू से कविता लिखते थे। तो प्रभुपाद जी ने एक बड़ी सुंदर कविता लिखी जिसमें उन्होंने कहा, आप मुझे यहां ले तो आए हो पर कौन सुनेगा आपके संदेश को, क्योंकि उन्होंने देखा कि अमेरिकन लोग इंडिया तृप्ति में इतने जुड़े हुए हैं। तो फिर आगे उन्होंने ये भी लिखा, पर राधा रानी जी की असीम कृपा से हर कार्य संभव हो सकता है। प्रभुपाद जी का पूरा विश्वास था कि भक्ति सिद्धांत जी सरस्वती ठाकुर का जो आदेश है वो पूरा हो सकता है। चैतन्य महाप्रभु जी की भविष्यवाणी थी, पृथ्वी आदि जल नगर निगम सर्वदा प्रचार अभिमान, पृथ्वी के जितने नगर गांव हैं सब जगह क्या यह हरि नाम पहुंचेगा। तो भक्ति सिद्धांत जी ने भी कई सन्यासी शिष्यों को भेजा था विदेश में कृष्ण भक्ति की स्थापना करने के लिए, तो वो सब लौट कर आ गए बिना किसी सफलता के। एक इंग्लैंड में एक उनके सन्यासी शिष्य गए थे तो एक लॉर्ड मिला था, जैसे हिंदुस्तान में लोकसभा राज्यसभा है तो इंग्लैंड में एक है हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड। तो ये नहीं, ये लॉर्ड व्यक्ति था, टाइटल थी, जैसे प्राचीन समय में इंडियंस को राय बहादुर दिया जाता था। तो उसमें रुचि थी ब्राह्मण बनने के लिए, तो उसने प्रभुपाद जी के गुरु भाई को पूछा, मैं ब्राह्मण बनना चाहता हूं तो मुझे ब्राह्मण बना सकते हो। उन्होंने कहा, हां बन सकते हो पर आपको ये नियमों का पालन करना पड़ेगा। तो फिर उसने कहा, नहीं 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 ये असंभव, ये संभव नहीं। तो प्रभुपाद जी के कई गुरु भाई जो विदेशों में आए थे वो लौट गए बिना किसी सफलता के, ये सोचकर कि हाँ महाप्रभु जी की भविष्यवाणी तो है पर कलियुग का बहुत गहरा हो गया है, ये सफल नहीं हो पाएगा। पर प्रभुपाद जी को पूरा विश्वास था अगर प्रयास करें तो सफलता प्राप्त होगी। तो हम लीला मीता को पढ़ते हैं हर एकादशी में, कि आप इसे पढ़ सकते हो कि प्रभुपाद जी ने कितना संघर्ष किया कृष्ण भक्ति की स्थापना करने के लिए और किस प्रकार भक्तों ने प्रभुपाद जी की इच्छा को पूरा करने के लिए हर प्रकार से त्यागा इस आंदोलन को विश्व के कोने कोने में पहुंचाने के लिए। भगवान गीता में कहते हैं, मन मन बाबा मत भक्तो मत याजी माम नमस्कारो, मेरा चिंतन करो मेरा भक्त बनाओ। तो भगवान उनके शुद्ध भक्त क्या चिंतन करते हैं। प्रभुपाद जी प्रकट हुए थे पृथ्वी पर चैतन्य महाप्रभु जी की भविष्यवाणी को सफल बनाने के लिए। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हम प्रभुपाद जी की लीलाओं और उनके उपदेश ध्यान से समझें और मन में सदा आध्यात्मिक विचार बिठाएं। अगर हम मन में आध्यात्मिक विचार बिठाओगे तो आपका मन शुद्ध स्थान में रहेगा और आप किस कार्य से बचोगे, किस कार्य से बचोगे, माया के कार्य से बचोगे। तो ये आप लोग एक लीलामृता पढ़ो और बड़े प्रेम से समझो कि प्रभुपाद जी ने किस प्रकार इस आंदोलन की स्थापना की पूरे विश्व में। श्री प्रभुपाद की भागवतम का एक श्लोक भी पढ़ लेंगे क्योंकि नृसिंह चतुर्दशी है थोड़े दिनों में, तो इसलिए हम सातवें के छठे अध्याय पढ़ रहे हैं जिसमें प्रहलाद महाराज अपने भक्तों को उपदेश देते हैं। यथा पुरुषस्येह विष्णु तदोपसर्पण या एष सर्व भूतानां प्रिया आत्मेश्वर यथा हि पुरुषास्येह विष्णुपदोपसर्पणम् यदेश सर्वभूतानां प्रिया आत्मेश्वरासुर। अनुवाद और तात्पर्य
शब्दार्थ यथा जिससे कि ही निसंदेह पुरुषस्य जीव का इह यहां विष्णु भगवान विष्णु का पाद उपसर्पणम चरण कमलों के निकट आना, यत क्योंकि एषः यह सर्वभूतानां समस्त जीवों का प्रियः प्रिय आत्म ईश्वरः आत्मा का स्वामी परमात्मा सुहृत शुभ चिंतक तथा मित्र। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। अनुवाद, यह मनुष्य जीवन भगवत धाम जाने का अवसर प्रदान करता है, अतएव प्रत्येक जीव को विशेषतया उसे जिसे मनुष्य जीवन मिला है भगवान विष्णु के चरण कमलों की भक्ति में प्रवृत्त होना चाहिए। यह भक्ति स्वाभाविक है क्योंकि भगवान विष्णु सर्वाधिक प्रिय परमात्मा तथा सब जीवों के शुभ चिंतक हैं। तात्पर्य भगवद गीता में 5.29 भगवान कहते हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिम ऋच्छति। साधु लोग मुझे समस्त यज्ञ तथा तपस्या का परम प्रयोजन समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी तथा हितैषी जानकर भौतिक यातनाओं से मुक्ति प्राप्त करते हैं। इन तथ्यों को कि भगवान विष्णु ही सारी सृष्टि के मालिक हैं, वे समस्त जीवों के सर्वश्रेष्ठ हितैषी तथा हर वस्तु के परम भोक्ता हैं, समझ लेने पर मनुष्य शांत तथा सुखी बनता है। इसी दिव्य सुख के लिए जीव ब्रह्मांड भर में नाना योनियों तथा विभिन्न लोकों में चक्कर लगाता रहता है, किंतु विष्णु के साथ अपने घनिष्ठ संबंध को भूल जाने के कारण उसे जन्म जन्मांतर कष्ट भोगना पड़ता है। अतएव मनुष्य जीवन में शिक्षा प्रणाली ऐसी होनी चाहिए कि मनुष्य ईश्वर या विष्णु के साथ अपने घनिष्ठ संबंध को समझ सके। प्रत्येक जीव का ईश्वर से घनिष्ठ संबंध होता है, अतएव मनुष्य को चाहिए कि वह शांत रस में भगवान का यशोगान करके या दास्य रस में दास की भांति विष्णु से नित्य संबंध स्थापित करके या सख्य रस में मित्र की तरह या वात्सल्य रस में माता पिता के रूप में या माधुर्य रस में दाम्पत्य प्रेमी के रूप में रहे। ये सारे संबंध प्रेम के स्तर पर होते हैं। विष्णु हर एक के प्रेम के केंद्र हैं, अतएव हर एक का कर्तव्य है कि वह भगवान की प्रेम भक्ति में लगे। जैसा कि भगवान ने भागवतम में कहा है, येषाम् अहम् प्रिय आत्मा सुतश्च सखा गुरुः सूर्यदो देवमिष्टम्। किसी भी रूप में सही हम विष्णु से संबंधित हैं, जो परम प्रिय परमात्मा पुत्र मित्र तथा गुरु हैं। ईश्वर के साथ हमारा नित्य संबंध मनुष्य जीवन में ही जागृत हो सकता है और शिक्षा का लक्ष्य भी यही होना चाहिए। निसंदेह यही जीवन तथा शिक्षा की पूर्णता है।
तो ये उपदेश प्रहलाद मनाते रहे हैं भगवतम के साथ। आप पढ़ते हो किस प्रकार हिरण्यकशिपु ने तपस्या का पालन किया और किस प्रकार प्रहलाद ने ज्ञान प्राप्त किया। किनके द्वारा? नारद मुनि के द्वारा। जिस समय प्रहलाद के पिता हिरण्यकशिपु पर्वत में जाकर ध्यानी तपस्या कर रहे थे, तो प्रहलाद उस समय माता के घर में थे और देवता प्रहलाद की माता को घसीट करने जा रहे थे। वहां पहुंच गए नारद मुनि। नारद मुनि ने कहा, क्या कर रहे हो, निर्दोष औरत को घसीट रहे हो? उन्होंने कहा, देवताओं ने, अब जानते नहीं ये कौन है, ये तो श्रीमती हिरण्यकशिपु है, इसके गर्भ में एक बड़ा असुर है और हमारा भाव है जैसे पैदा होगा उसे मार दिया जाएगा। नारद मुनि ने कहा कि नहीं, उसके गर्भ में एक महान संत है। और फिर नारद मुनि के कहने पर उन्होंने छोड़ा और प्रहलाद ने दिव्य ज्ञान प्राप्त किया जब वो माता के घर में थे। तो प्रहलाद शुरू से ही आत्मज्ञानी है और प्रहलाद महाराज 12 में से एक महाजन है। शंभु निनाद शंभु कौमर कपिलो मनु प्रहलादो जनक भीष्मो बलिर वही वैसे 12 महाजन हैं, जिनमें एक हैं प्रहलाद महाराज। महाजन हैं, महाजन तो ऐसे भारत में और हिंदू समाज में एक जात बन गई है। शायद आप में से किसी का नाम महाजन हो, पर महाजन का अर्थ है जिसके पास धार्मिक ज्ञान हो, वो प्रभु जो कि भगवान का शुद्ध संदेश का प्रचार करता है और जीवन बिताता है शास्त्रों की शिक्षा के अनुसार। तो प्रहलाद महाराज उपदेश दे रहे हैं अपने साथियों को। इनके जो साथी थे ये सभी असुरिक स्वभाव के थे और प्रहलाद इन्हें उपदेश दे रहे हैं। कल के श्लोक में प्रहलाद ने यह कहा है कि जो व्यक्ति बुद्धिमान है वो इस मनुष्य जीवन का छोटी आयु से ही उपयोग करता है। किस लिए? भगवान की सेवा के लिए। और ये जो मनुष्य जीवन है ये अत्यंत दुर्लभ है। कितने लोग सोचते हैं समाज में ये मनुष्य जीवन दुर्लभ है। कोई आपको स्कूल में ये शिक्षा देता है? हाँ, बड़े बड़े पाठशाला हैं, महाविद्यालय हैं। एक समय प्रभुपाद जी अमेरिका के एक बड़े प्रसिद्ध महाविद्यालय में उपदेश दे रहे थे और प्रभुपाद जी ने अपना लेक्चर आरंभ किया एक प्रश्न के साथ। प्रभुपाद जी ने पूछा, अमेरिका के इतने बड़े महाविद्यालय में कोई ऐसा विभाग है जहाँ की यह शिक्षा दी जाती है कि मृत्यु के बाद व्यक्ति कहाँ जाता है? और कोई उत्तर नहीं दे पाया। तो वास्तविक असलियत यह है कि समाज में कोई सोचता ही नहीं कि मनुष्य जीवन अत्यंत दुर्लभ है। तो प्रहलाद महाराज आज के श्लोक में क्या कह रहे हैं? कहते हैं कि जो मनुष्य जीवन है इसके द्वारा आप भगवान के धाम लौट सकते हो, बैक टू गॉड। प्रभुपाद जी ने जब एक पत्रिका शुरू की थी 1944 में, उस पत्रिका का नाम प्रभुपाद जी ने क्या दिया, बैक टू गॉड है। क्योंकि प्रभुपाद जी कह रहे थे कि अगर आप इस पत्रिका के संदेश को स्वीकार करोगे तो कहां जाओगे, भगवान के धाम। बहुत कम व्यक्ति ये ज्ञान रखते हैं कि ये आपका असली पता नहीं है, आपका असली पता क्या है, वैकुंठ धाम। तो यहां प्रहलाद महाराज जी कह रहे हैं कि मनुष्य जीवन के द्वारा, कल के श्लोक में प्रहलाद महाराज कह चुके हैं, मनुष्य जीवन अत्यंत दुर्लभ है, बड़ी कठिनाई से प्राप्त होता है। 84 लाख योनियों में केवल 4 लाख योनियां ही मनुष्य की मानी जाती हैं। तो आज के श्लोक में प्रहलाद महाराज जी कह रहे हैं मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभ है और हमें मौका देता है क्या, भगवान के धाम लौटने के लिए। इसलिए हर जीवात्मा को इस मनुष्य जीवन का उपयोग करना चाहिए। किस लिए, किस लिए, भगवान विष्णु की भक्ति करने के लिए। और ये जो भक्ति है ये स्वाभाविक है, और हम सबके असली प्रेमी कौन है, स्वयं भगवान है। और भगवान जो हैं पूरे समाज के शुभचेतक हैं। प्रभुपाद जी ने एक समय कहा कृष्ण भक्ति बड़ी सरल है, क्या, ये स्वीकार करो परम भगवान हर चीज के भोक्ता हैं, वो हर चीज के स्वामी हैं, वो हमारे शुभचिंतक हैं। तो प्रहलाद महाराज का जो की जो शिक्षा है, ये शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है, और हम भक्तों को उनकी शिक्षा को बड़े ध्यान से समझना चाहिए। प्रहलाद महाराज के पिता से आप सब परिचित हो, और अगर आपसे पूछा जाए क्या है हिरण्यकशिपु का परिचय, तो आप क्या कहोगे, असुर हाँ? नहीं, क्या है हिरण्यकशिपु का परिचय, हिरण्यकशिपु तो भगवान के ऊंचे कोटि के भक्त थे। जब कुमार ने वैकुंठ धाम में प्रवेश किया तो जा रहे थे भगवान का दर्शन लेने के लिए, यहां के ने रोक दिया था, किसने, कुमार ने। 6 द्वारों से चले गए थे, 7वें द्वार में रुक गए थे, और उन्होंने कहा कि आप योग्य नहीं हो यहां खड़े होने के लिए। और उन्होंने श्राप दी, बाद में श्राप को वापस लेने को वो तैयार हो गए थे, पर भगवान ने कहा कि मेरी इच्छा है कि तुम उन्हें श्राप दो। क्यों, क्योंकि भगवान पृथ्वी पर प्रकट होने वाले थे, और भगवान की इच्छा थी कि उनके ही भक्त क्या बने, असुर बने, उनकी लीलाओं को ज्यादा मधुर बनाने के लिए। तो प्रहलाद महाराज शुरू से ही आत्मज्ञानी हैं, और प्रहलाद महाराज का जो संदेश है पूरे मानव समाज के लिए है। तो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं ये मनुष्य जीवन का हमें उपयोग करना चाहिए, किस लिए, भगवान के धाम लौटने के लिए। पर कौन सोचता है कि मनुष्य जीवन दुर्लभ है, कोई सोचता है नहीं। हम तो ये सोचते हैं कि हर जीवन ही मनुष्य प्राप्त देह में प्राप्त होगा, हम सोचते हैं कि जब शरीर त्यागा तो सभी भगवान के धाम जाते हैं। आप अखबारों में, पेपर में, एडवर्टाइजमेंट देखते हो, ही लेफ्ट फॉर हिज हेवनली अबोड, अक्सर है ना, सबके लिए लिखते हैं। पर ये थोड़ी, भगवान हेवनली अबोड जाना है तो इसकी आपको तैयारी करनी पड़ेगी, ये थोड़ी कि क्योंकि आपने शरीर त्यागा तो निश्चित ही आप भगवान के धाम लौटोगे। भगवान के धाम लौट सकते हो अगर आप भगवान की शिक्षा का पालन करो। तो इस श्लोक में प्रहलाद महाराज बड़ा महत्वपूर्ण संदेश दे रहे हैं, और इस पूरे अध्याय में प्रहलाद महाराज भक्ति की महिमा का उपदेश दे रहे हैं। प्रहलाद महाराज को अपनी भक्ति निभाने के लिए अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, है कि नहीं? अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ये जरूर है कि हमें भी भगवान का प्रचार करने के दौरान कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, पर प्रहलाद महाराज की तुलना में हमारी कठिनाई कुछ भी नहीं है। प्रहलाद महाराज को क्या नहीं सहना पड़ा, झेलू सांपों ने उन्हें घेरा, हाथी उनके सिर पर, हाथियों ने अपना पैर रखा उनके शरीर पर उनके उनको पहाड़ों से फेंका गया, पर हर स्थिति में उनकी सुरक्षा हुई। क्यों? क्योंकि वो क्या थे? भगवान के भक्त। भगवान ने गीता में क्या कहा, हे अर्जुन तुम सारे विश्व को ये सूचना दो, क्या? कौन थे जब पट जाने ही में भक्त अपन सुधी। तो भौतिक दुनिया में हम एक कईयों को प्रसिद्ध व्यक्तियों को हीरो बनाते हैं, भौतिक दुनिया में हम कई भौतिक व्यवहारों को हीरो बनाते हैं, है ना? जैसे कि आज का कलयुग के देवता कौन है, ये क्रिकेट के खिलाड़ी, फिल्म स्टार, राजनीतिक नेता। पर भक्तों के लिए हीरो कौन है? प्रहलाद जैसे भक्त। आप प्रहलाद जैसे भक्त से देखते हो किस प्रकार से उन्हें संघर्ष करना पड़ा, क्या करने के लिए? भगवान की शिक्षा का पालन करने के लिए। तो प्रहलाद महाराज जी कह रहे हैं कि मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभ है और इसका उपयोग करो, किस लिए? भक्ति की शिक्षा का पालन करने के लिए। प्रहलाद महाराज के पिता जो थे वो अत्यंत क्रोधित थे, किसके ऊपर? प्रहलाद के अध्यापकों के ऊपर। प्रहलाद के दो अध्यापक थे, संदा और अमेरिका, जो कि शुक्राचार्य के बेटे थे। तो संदा और अमेरिका उन्हें उनके जो प्रहलाद के पिता थे बहुत डांटते थे, कहते थे कौन मेरे बेटे को विष्णु की भक्ति का ज्ञान दे रहा है, क्योंकि विष्णु उनके पिता के शत्रु थे। क्यों? उनके भाई का भी वध हुआ था विष्णु के हाथों। तो प्रहलाद के पिता समझ नहीं पाए कौन मेरे बेटे को ये आध्यात्मिक ज्ञान दे रहा है, क्या लोग ये वैष्णव वेश बदल कर आ रहे हैं मेरे बेटे को शिक्षा देने के लिए? ये था उनकी चिंता। और वो उन्होंने कई दफा संदा और मार्का को बुलाकर डांटा, क्यों मेरे बेटे को कौन दे रहा है ये आध्यात्मिक ज्ञान? और संदा और मार्का कहते थे हमने नहीं दिया ये ज्ञान, हमें मत डांटो, हम इसके कारण नहीं है, हम तो पूरा सावधानी से आपके बेटे पर नजर रख रहे हैं। तो पर हमने आपके बेटे को ये विश्वास दिला दिया है कि आप वो सर्वश्रेष्ठ, तो आप वो सर्वश्रेष्ठ, आप चाहो तो उनकी परीक्षा ले लो। तो एक दिन पिता ने बेटे को गोद में बिठाया, पिता ने बेटे को गोद में बिठाकर पूछा, हे प्रहलाद ये बताओ तुमने पाठशाला में क्या सीखा है? उसने ये उम्मीद की थी हिरण्यकश्यपु ने कि बेटा कहेगा आप हो सर्वश्रेष्ठ, पर बेटे ने क्या कहा? बेटे ने कहा श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेनम आचरण वंद्यम वंद्यम दास आत्मनिवेदन, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेनम आचरण वंद्यम दसम सख्यम आत्मनिवेदन। उन्होंने नवदा भक्ति का ज्ञान दे दिया। जैसे ही नवदा भक्ति का वर्णन किया, प्रहलाद के पिता ने प्रहलाद को अपने गोद से उठाकर नीचे फेंका, और तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, भक्ति आरंभ होती है कैसे? श्रवणम और कीर्तनम के साथ। तो अगर आप भगवान के धाम लौटना चाहते हो, जो कि उपदेश है इस श्लोक का प्रहलाद महाराज जी के द्वारा, तो हमें क्या करना चाहिए? शरणम कीर्तनम का पालन करना चाहिए। शरणम कीर्तनम का पालन करोगे तो फिर आप भगवान के धाम लौट सकोगे। जैसे हमने कहा था थोड़े समय पहले, हम सबका लक्ष्य होना चाहिए कि हम सदा भगवान का चिंतन करें, स्मरण करें, जो कि विष्णु स्मरणम कहलाता है। और विष्णु स्मरणम संभव होगा केवल अगर आप श्रवणम और कीर्तनम भी करोगे। श्रवणम कीर्तनम नहीं करोगे तो विष्णु स्मरणम भी संभव नहीं हो पाएगा। तो श्रवणम कीर्तनम भक्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। इसलिए अगर हम भगवान के धाम लौटना चाहते हैं तो हमें प्रयास करना पड़ेगा। अगर हम ये सोचें कि प्रयास किए बिना सफलता प्राप्त होगी, संभव है? है नहीं है। हमें प्रयास करना पड़ेगा। और इसलिए हमें श्रवणम कीर्तनम बड़े ध्यान से करना चाहिए। और श्रवणम कीर्तनम ध्यान से करेंगे तो विष्णु स्मरणम भी संभव हो पाएगा। विष्णु स्मरणम का अर्थ है सदा भगवान का चिंतन करना। जैसे भगवान गीता में कहते हैं, सदा मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो। तो ये अंतर्राष्ट्र कृष्ण भावनामृत संघ का मूल उद्देश्य क्या है? यह हरि नाम का प्रचार करना, हरि नाम की महिमा का प्रचार करना। और आप देख सकते हो किस प्रकार प्रभुपाद जी ने सारे विश्व की प्रजा को आकर्षित किया भक्ति में, किस माध्यम से? हरि नाम के माध्यम। प्रभुपाद जी न्यूयॉर्क में जब गए थे टॉमकिंस स्क्वायर पार्क में, पेड़ के नीचे बैठकर केवल हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा उन्होंने लोगों को प्रभावित किया। तो ये जो मनुष्य जीवन है ये प्राप्त होता है बड़ी कठिनाई से, जैसे प्रहलाद महाराज कह चुके हैं। इसलिए हमें इस मनुष्य जीवन का उपयोग करना चाहिए भक्ति की शिक्षा स्वीकार करने के लिए। तो हम सब भक्तों को प्रचार करना चाहिए और लोगों को यह याद दिलाना चाहिए कि भक्ति का ज्ञान ही असली चीज है, भक्ति ही असली चीज है। तो ये है इस संस्था का मूल उद्देश्य। प्रहलाद महाराज ने कहा, हे भगवान, मुझे अपनी मुक्ति की चिंता नहीं। तो आपको किस चीज की चिंता है? अपनी मुक्ति की चिंता नहीं। मुझे चिंता है उन व्यक्तियों की जो कि दुख की स्थिति को सुख की स्थिति में बदलने का प्रयास कर रहे हैं। प्रहलाद ने कहा, मैं पहाड़ों में जाने को तैयार नहीं हूं। क्यों? मैं रहना चाहता हूं कहां, जहां की जहां सब भक्त हैं जिनको मैं ये उपदेश दे सकूं। तो प्रहलाद महाराज की जो शिक्षा है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हम देखते हैं किस प्रकार प्रहलाद की सुरक्षा कृष्ण की, भगवान ने की। राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के। जिसको कृष्ण बचाना चाहे कोई मार नहीं सकता, जिसको मारना चाहे कोई बचा नहीं सकता। इसलिए हमें बड़ी गंभीरता से कृष्ण भक्ति को स्वीकार करना चाहिए। और कृष्ण भक्ति ही अवश्य है। भक्ति सिद्धांता जी कहते थे, इस पृथ्वी में अगर किसी चीज की कमी है तो किस विषय की कमी है? ये कृष्ण भक्ति की कमी है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में भोक्तृणां यज्ञ तपस्वम का उपयोग कर रहे हैं ये बताने के लिए। जैसे भगवान गीता में कहते हैं कि अगर आप हर चीज के भोक्ता, हर चीज के स्वामी, परम भगवान की सेवा करोगे तो आप हमेशा संतुष्ट रहोगे। जैसे कि अगर आप पेट में भोजन डालते हो तो पूरे शरीर में इसका प्रभाव आ जाता है। उसी प्रकार कृष्णा भक्ति के द्वारा आप अपने मन बुद्धि इंद्रियों को सबको संतुष्ट कर सकते हो। तो साधु संघ में हमें रहना चाहिए, क्योंकि साधु संघ में हमें इस भक्ति की महिमा का ज्ञान मिलता है। तो इसलिए शास्त्र का निर्णय क्या है? साधु संघ साधु संघ सर्वशास्त्र काया, लावा माता साधु संघ सर्वसिद्धि। सब शास्त्रों का निर्णय क्या है? ये कृष्ण भक्ति को स्वीकार करो और जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करो। तो प्रहलाद महाराज इस पूरे अध्याय में यही शिक्षा दे रहे हैं और प्रहलाद प्रभुपाद जी ने हमें जो भी शिक्षा दी है ये 100% निर्भर है किसकी शिक्षा के ऊपर, प्रहलाद महाराज की शिक्षा के ऊपर। तो हमें इस शिक्षा को स्वीकार करना चाहिए और इस माध्यम से अपने जीवन को आप सफल बना सकोगे। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है? हाँ
पूछिए।
हाँ
हरे कृष्णा महाराज, दंडवत प्रणाम। महाराज एक प्रश्न था लीलामृत से कि जैसे बोला था स्टे हाई फॉर एवर, तो लाइक हम लोग भक्ति करते हैं बट फिर कभी ऊपर रहते हैं कभी दुखी होते हैं, तो हम लोग स्टे हाई फॉर एवर क्यों नहीं होते हैं? और महाराज एक और था उसके आगे कि बोलते हैं कि एक्सपैंड योर कॉन्शियसनेस, जैसे तो ये चेतना को बढ़ाना मतलब क्या, एक्सपैंड कॉन्शियसनेस मतलब क्या महाराज?
मतलब स्टे हाई, आप हमेशा ऊपर रह सकते हो, हमेशा आनंद में रह सकते हो अगर आप भक्ति के साथ जुड़े रहो। ये नहीं कि भक्तों को कभी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा, नहीं करना पड़ेगा, पर भक्त जो है हर स्थिति में क्योंकि भक्ति में जुड़ा रहता है इसलिए वो हमेशा संतुष्ट रहता है। और हम क्यों कभी कभी उत्साहित होते हैं कभी कभी उत्साह कम हो जाता है, क्यों? उसका कारण ये है कि हम सदा भक्ति की विधियों का पालन नहीं करते। अगर आप भक्ति के मार्ग में जुड़े हो तो कठिन स्थिति में भी आप भगवान का स्मरण करोगे। आप कभी ये नहीं सोचोगे भगवान ने मुझे ऐसे परिस्थिति में क्यों डाला। जैसे कुंती महारानी कहती हैं, हे भगवान आप मेरे कष्टों को बढ़ाओ, क्योंकि जितना आप कष्टों को बढ़ाते हो उतना ज्यादा मैं आपके चरण कमलों का स्मरण करती हूँ और उतनी जल्दी ही मेरे जन्म मृत्यु के बंधन में छुटकारा मिलेगा। तो अगर कभी कभी हम उत्साहित होते हैं तो कम हो जाते हैं, उसका कारण यह है कि हम सदा भक्ति की विधियों का पालन नहीं करते। ओके ओके।
हरे कृष्णा महाराज।
या
महाराज, जो ये दो राक्षस गुरु थे शंड और अमर्क, तो महाराज जी जो ये अमर्क थे तो क्या अमेरिका का नाम इनके ऊपर ही पड़ा हुआ है अमर्क के ऊपर?
सरदार अमर्क हमने सोचा तो नहीं था वैसे। अमेरिका और अमेरिका में थोड़ा सा अंतर है। मेरे ख्याल से अमेरिका का नाम का कोई संबंध नहीं है अमेरिका के साथ, पर ओके या
हरे कृष्णा। थैंक यू महाराज, वाज अ नाइस क्लास। What is the best way to chant actually?
Well, the different stages of chanting the holy name, but the best is to do attentive chanting. आप भगवान का नाम तो अनेक परिस्थितियों में ले सकते हो, पर सबसे बेहतर है अगर आप ध्यान पूर्वक जाप करो।
ध्यान पूर्वक
जाप का अर्थ है कम से कम जब आप जाप कर रहे हो उसको ध्यान से सुनो, और ध्यान से सुनोगे तो आप देखोगे कि तेजी के साथ हृदय की मैल दूर होगी। और अगर हम ध्यान से नहीं सुनेंगे तो ये मैल तेजी के साथ नहीं निकलेगी। कई बार हम कहते हैं हम तो इतने सालों से जाप कर रहे हैं पर हमारी मैल नहीं जा रही, क्या कारण है? कारण हमारे में दोष हमारा है, महामंत्र में कोई कमी नहीं, महामंत्र का उच्चारण ठीक रूप से नहीं कर रहे, वो है हमारी कमजोरी। तो भक्तों से निवेदन किया जाता है कि वो ध्यान पूर्वक जाप करें, और सुबह के समय जाप करने के लिए सबसे बेहतर है। जाप का लाभ तो हर स्थिति में है, जितने ध्यान से करोगे उतना अधिक लाभ होगा।
क्यों?
अगर कोई शराबी कहे ये शराब का टेस्ट कृष्ण है, उसमें भी लाभ है, पर अगर आप पूरा लाभ उठाना चाहते हो तो ध्यान से करना चाहिए। ओके,
हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रहलाद महाराज जी का गुरु परंपरा किस गुरु परंपरा में साथे थे?
क्या
प्रहलाद महाराज जी का गुरु परंपरा कौन सा था?
उनकी गुरु परंपरा कौन सी है? जो हमारी गुरु परंपरा है उनकी जीवी है। प्रहलाद महाराज प्रकट हुए थे 5000 साल पूर्व, उनकी गुरु परंपरा कौन सी है वो? ये कहना मुश्किल है। प्रहलाद महाराज आत्मज्ञानी है शुरू से। और हम सबको भागवतम के 7वें स्कंद को बड़े ध्यान से पढ़ना चाहे। 7वें स्कंद में प्रहलाद महाराज जी का ज्ञान बड़े गहराई के साथ प्राप्त होता है, उनकी शिक्षा का, और किस प्रकार प्रहलाद ने दिव्य ज्ञान प्राप्त किया नारद मुनि के द्वारा। यस,
हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम। मैंने मेरे बचपन में एजुकेशनल लाइफ में एक दोहा पढ़ा था, बड़ा हुआ तो क्या हुआ। हेलो, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी महाराज। मैंने अपने बचपन में एक दोहा पढ़ा था, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। कोई विद्वान अगर अपना ज्ञान अपने भक्तों में तकसीम नहीं करता है, बांटता नहीं है, उनके साथ संबंध नहीं रखता है, तो ऐसे विद्वान जैसे पेड़ खजूर, खजूर के जैसा पेड़ है जिसकी छाया भी नहीं मिलती और फल भी नहीं मिलते, तो ऐसी स्थिति में सामान्य जन को, हम जैसे भक्तों ने क्या करना चाहिए? हरे कृष्ण।
समझा नहीं आप लोग प्रश्न। शिक्षा तो बहुत है इस संसार में, कोने कोने में पाठशाला है, महाविद्यालय है, पर क्या कमी है आध्यात्मिक शिक्षा की। इसलिए हमें प्रचार को बढ़ाना चाहिए, ग्रंथों के वितरण को बढ़ाना चाहिए, हमें घर घर जाकर लोगों को कृष्ण भगवान का उपदेश देना चाहिए। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने कहा, बोलो कृष्ण, बाजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा, और फिर समाज सुधरेगा। हरे कृष्णा।